ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार विकसित भारत के लिए प्रदेश को पावर हाउस के रूप में तैयार कर रही है। आज सदन में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण राज्य की जीएसडीपी करीब 11.5% और प्रति व्यक्ति आय में करीब 10% की वृद्धि होने का अनुमान। वित्त मंत्री ओपी चौधरी कल विधानसभा में पेश करेंगे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट। और रायपुर सहित राज्य के कई स्थानों के मौसम में आज आया बदलाव, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 20 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमन डेका के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार विकसित भारत के लिए प्रदेश को पावर हाउस के रूप में तैयार कर रही है। इसके लिए एनर्जी समिट का आयोजन भी किया गया, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्यपाल ने बताया कि सरकार प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए संकल्पित है। सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता को अपनाया है। लाल फीताशाही को रोकने ई फाइल की व्यवस्था लागू की गई है, साथ ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी शुरू हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब तेजी से वैश्विक टूरिज्म के नक्शे में अपनी जगह बना रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहां की सरल, सहज और मेहनतकश जनता की बदौलत राज्य सरकार इन संभावनाओं को साकार करने की दिशा में कड़ी मेहनत कर रही है।
माननीय सदस्यगण, वर्ष 2047 तक प्रदेश के विकसित राज्य बनाने के लिए अंजूर विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। इस पर आगे बढ़ते हुए तेजी से विजन डॉक्यूमेंट के लक्ष्य के प्राप्त करने के दिशा में सफलतापूर्वक काम हो रहा है। आप सभी इसी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप सभी के सत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य के किसानों द्वारा उपजाया जाने वाला खाद्यान्न निर्यात के माध्यम से अधिक मात्रा में विदेशों तक पहुंचे, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी तकनीकों पर काम कर रही है जिससे खाद्यान्नों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की सहायता से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने माओवादियों के आत्मसमर्पण के लिए बेहतर नीति बनाई है, जिसके फलस्वरूप भटके हुए युवा अब मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से माओवादी आतंक से मुक्ति की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिन धुर नक्सल प्रभावित इलाकों को माओवाद से मुक्त किया गया है, वहां नियत निल्लानार योजना के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही बस्तर में विकास के लिए कनेक्टिविटी को विशेष प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसके अनुसार वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 11.57% बढ़ने का अनुमान है। चालू वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़कर 6,31,291 करोड़ रूपये होना संभावित है। यह वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। सबसे अधिक वृद्धि सेवा क्षेत्र में हुई है, जो कि 13.15% है। वहीं कृषि क्षेत्र में भी करीब 12.5% की वृद्धि आंकी गई है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 10% की वृद्धि अनुमानित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ की मजबूत और संतुलित अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ आज किसानों की समृद्धि और औद्योगिक मजबूती के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा क्षेत्र छत्तीसगढ़ की नई अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान करीब 49% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह दर्शाता है कि राज्य में निवेश, रोजगार और विकास के नए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी कल 24 फरवरी को विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे। बजट भाषण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी के सारथियों से बातचीत की। आज जारी एक वीडियो में श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी सहकारी समिति का उद्देश्य चालकों को उनके काम का स्वामित्व देकर उन्हें सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि इस पहल का लक्ष्य निजी टैक्सी सेवा कंपनियों से जुड़ी समस्याओं को कम करना और चालकों को लाभ दिलाना है।
ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को मुनाफा मिले, किसी सेठ को न मिले। अब आप भारत टैक्सी का विचार क्यों आया? ये जो आपने कहा, ढेर सारी कंप्लेंट्स आती थी, 30% कट जाता था, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, जितने भी कंप्लेंट्स हैं वो, इसका निवारण क्या? वो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। फर्क इतना है कि मालिक आप हो।
भारत टैक्सी की अनूठी सारथी दीदी पहल का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस सुविधा के माध्यम से महिला यात्री अपनी यात्रा के लिए महिला चालकों का चयन कर सकती हैं। श्री शाह ने बताया कि भारत टैक्सी की सारथी महिलाओं को बीमा लाभ और आसान ऋण सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में इस ऐप में महिला सुरक्षा के लिए विशेष उपाय शामिल किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। माओवादियों की ओडिशा राज्य कमेटी के पश्चिम सब जोनल ब्यूरो सचिव विकास द्वारा छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा के नाम एक पत्र जारी कर आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने की इच्छा जाहिर की गई है। इस पत्र के अनुसार बलांगीर, बरगढ़ और महासमुंद इलाके में सक्रिय करीब 15 माओवादी 2 या 3 मार्च को आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इस पत्र के जवाब में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने माओवादियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की चिंता न करें और संबंधित जिले के पुलिस अधिकारियों संपर्क कर आत्मसमर्पण करें। सरकार उनका स्वागत करेगी और उनके पुनर्वास के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे।
आप सभी 15 साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि दिनांक आपने दिया है कि मार्च 2 और 3 तक आप वापस आना चाहते हैं, आप अवश्य आ जाएं। इसके लिए किसी प्रकार की चिंता आप मन में न रखें। आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि एक मोबाइल नंबर है, उसको आप नोट कर लें, 7 6 4 6 9 3 5 8 9 4। इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर लें। महासमुंद के SP हैं, उनसे आप संपर्क कर लीजिए। IG का नंबर हो तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए। किसी से भी संपर्क आप कर लीजिए, आप सुरक्षित वापस आ जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी बड़ी स्पष्टता से इस बात को कहा है कि आने वाले सारे ही ऐसे साथी जो पुनर्वास करना चाहते हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाएगा। हथियार जो भी आपके हाथ में है वो आप जरूर लेते आए। 2 और 3 मार्च से और आगे समय न जाए, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा।
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा की माओवादियों के नाम संपूर्ण अपील का प्रसारण भी आकाशवाणी द्वारा किया जाएगा। ये प्रसारण आकाशवाणी के छत्तीसगढ़ स्थित विभिन्न केंद्रों द्वारा 25 फरवरी तक सुबह 9:20 से और शाम 5:30 से किया जाएगा। बीजापुर जिले में आज IED विस्फोट की चपेट में आने से सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के दक्षिण क्षेत्र स्थित गलगम के जंगलों में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी। इसी दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए IED में विस्फोट होने से SDF का जवान घायल हो गया। घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया जा रहा है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी ज्वाइन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट के ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल पर 1 अप्रैल तक पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम इस वर्ष जुलाई अगस्त में आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले वर्ष जनवरी में होने वाली भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर वज्रपात होने की आशंका जताई है। राज्य में आज भी राजधानी रायपुर सहित कुछ स्थानों पर बादल छाए रहे तथा हल्की बारिश भी हुई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल हुए क्रिकेट मैच के दौरान दुर्ग जिले में करीब 50 लाख रुपए से अधिक का ऑनलाइन सट्टा खिलाते दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि सामग्री जब्त की गई है। केंद्र सरकार के जनजाति मंत्रालय ने कोंडागांव जिले की ग्राम पंचायत बनजुगानी में घोटुल और जनजाति युवाओं के लिए सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 5 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र के पोंच गांव में बहराडीह के किसान द्वारा जैविक खेती अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में फाइलेरिया मुक्त अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर लोगों को दवा का सेवन कराया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार विकसित भारत के लिए प्रदेश को पावर हाउस के रूप में तैयार कर रही है। आज सदन में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण राज्य की जीएसडीपी करीब 11.5% और प्रति व्यक्ति आय में करीब 10% की वृद्धि होने का अनुमान। वित्त मंत्री ओपी चौधरी कल विधानसभा में पेश करेंगे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट। और रायपुर सहित राज्य के कई स्थानों के मौसम में आज आया बदलाव, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।